नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चुनावी चंदे के धंधे पर प्रधानमंत्री ने बोल दिया है। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आधी फरवरी बीत गई, पूरा मार्च गुजर गया, तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कुछ कहा है। शायद इसलिए कि चुनावी हंगामे के बीच कुछ बोल दिया जाए, ताकि बयानों के शोर शराबे में बॉन्ड पर बोलने की औपचारिकता भी पूरी हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा क्या? क्या उसका कोई तार्किक आधार है, उसमें तथ्य है? आज के वीडियो में हम इस पर बात कर रहे हैं। आप वीडियो पूरा देखा कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ कहा है? सरकार की मंशा को लेकर फैसले में जो सवाल उठाए गए हैं उस पर कुछ कहा है? कोर्ट ने अवैध कहा, असंवैधानिक कहा, तो उस कानून का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी कैसे ले सकते हैं? यही नहीं, उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड पर बयान देने में 1.5 महीने का समय क्यों लगा? प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के थांती टीवी को इंटरव्यू दिया है। सवाल अंग्रेजी में था, सर आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा दैट हैज बीन पब्लिश्ड। डू यू थिंक दिस हैज कॉज्ड सम एम्बैरेसमेंट टू योर पार्टी एज ए सेटबैक? प्रधानमंत्री मोदी हिंदी में जवाब देते हैं और उनके ये शब्द हैं जो मैं पढ़ रहा हूं। मुझे बताइए, ऐसा क्या किया है जिसके कारण मुझे सेटबैक हो? मैं पक्का मानता हूं जो लोग इसको लेकर आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं वो पछताने वाले हैं। मैं जरा पूछना चाहता हूं कि इन सभी विद्वानों को कि 2014 के पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा ना? बिना खर्चा तो कौन एजेंसी है जो वो बता पाए कि भाई पैसा कहां से आया था, कहां गया और किसने खर्च किया है? क्या ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया? वरना पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव में खर्चा तो होता था। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड था। कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती हैं, कमियों को सुधारा जा सकता है। कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड होता तो आपके पास जानकारी होती कि यहां से यहां गया, यहां गया। प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसकी एक एक लाइन की काट यहां पेश की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मैंने किया क्या है जो मुझे सेटबैक हो? इसका साधारण जवाब यह है कि आपने कई प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर, संवैधानिक भावनाओं को दरकिनार कर एक ऐसा कानून बनाया जो अवैध पाया गया, जो असंवैधानिक पाया गया। विपक्ष ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह सब कहा है। उसके बाद जब इसकी जानकारियां सामने आई तो यह भी पता चला यह कानून किस लिए लाया गया। पता चला कि छापे के बाद कंपनियां करोड़ों रुपए का चंदा बीजेपी को दे रही थी। प्रधानमंत्री लगता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो लिखा है उसे भूल गए, या उन्हें लगता है कि जनता को पता तो चला ही नहीं, और जिन्हें पता है वो भी भूल चुके होंगे, आईपीएल के चक्कर में इन दिनों पड़े होंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा है उसे एक बार फिर से आप समझ लीजिए। यह कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और जनप्रतिनिधित्व कानून व कंपनी कानून में किए गए संशोधन अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करते हैं, सूचना के अधिकार के विरुद्ध हैं और असंवैधानिक हैं। जब आप सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों को पढ़ेंगे, फैसले को पढ़ेंगे और फिर इसके आधार पर सवाल करेंगे, तब प्रधानमंत्री को जवाब देते नहीं बनेगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया है, उन्हें क्यों झटका लगना चाहिए। दरअसल उन्होंने जो किया है झटका उन्हीं को लगना चाहिए। जब आप असंवैधानिक और अवैध कानून लाते हैं तो आपको झटका नहीं लगे तो किसे लगे? चोरी पकड़ी गई है, चोरी, जिन्हें शक था उनकी बात सही साबित हुई है, क्या ये प्रधानमंत्री के लिए झटका नहीं है? आपको मतलब प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने जो कानून बनाया उसके चोर दरवाजे को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। अब आते हैं उनकी दूसरी बात पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हैं कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, वरना तो पहले पता ही नहीं था। आपको ट्रेल मिल रहा है। प्रधानमंत्री की यह बात गलत भी है और झूठ भी। झूठ इसलिए कि मोदी ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया था कि जनता को पता चले। सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के वकील हर तरह से विरोध करते रहे कि इस बॉन्ड की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचे। कानून तो मोदी ने इसलिए बनाया कि यह पता ही ना चले किसी को। मोदी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बनाया उसका आधार क्या था? यही था ना कि कौन बॉन्ड खरीदेगा, पैसा किसे मिलेगा, यह किसी को पता न चले। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध कहा और आदेश दिया कि सार्वजनिक कीजिए। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट में अपनी सरकार का पक्ष भी भूल गए हैं। हम याद दिलाते हैं, केंद्र सरकार ने कहा नागरिकों को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। जानने का अधिकार कोई आम अधिकार नहीं है जो सभी नागरिकों को उपलब्ध है। जिस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि नागरिकों को जानने का अधिकार ही नहीं है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग कौन करता है, उसी सरकार के मुखिया कहते हैं कि उनके बनाए कानून के कारण पता चल रहा है किसने पैसा दिया, किसे मिला। कोर्ट में सरकार कंपनियों के पक्ष में खड़ी थी, जनता के जानने के अधिकार के पक्ष में नहीं। यह भी सरकार ने कहा है कि यह राज्य का सकारात्मक दायित्व है कि वह अपने नागरिकों की निजता की रक्षा करे, जिसमें किसी राजनीतिक दल से जुड़ने का उसका अधिकार भी शामिल है। खरीदार को यह अधिकार है कि वह अपनी राजनीतिक पसंद को उजागर किए बिना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। खरीदार को निजता का अधिकार है। कोर्ट में कह रहे हैं चंदा देने वाली कंपनियों की जानकारी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, यह उनकी निजता का अधिकार है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जो बात अब कह रहे हैं वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की बात को ही दोहरा रहे हैं। बस गलत यह बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कानून बनाया जिससे लोगों को पता चला। वे अपनी सरकार के फैसले का बचाव भी नहीं कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी नहीं कर रहे हैं। बहुत कम प्रधानमंत्री इस देश में ऐसा कर पाए हैं। इससे बेहतर था सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत ही कर लेते। बॉन्ड के बारे में नहीं बताने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कितनी मेहनत की सबने देखा। महंगे वकील लाए गए कि किसी तरह किसी को पता ना चले। अब कह रहे हैं मोदी कानून लाया तभी तो पता चल रहा है। अब जब चोरी पकड़ी गई है तब प्रधानमंत्री उसी को मेडल बनाकर पहन रहे हैं। सरकार की दलील थी कि जो चंदा दे रहा है उसे बाद में परेशान किया जा सकता है, लेकिन बाद में तो यही निकला ना कि छापे मारने के बाद कोई चंदा दे रहा है। यही नहीं, चंदा देने वाले के खिलाफ राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई ना हो इसलिए ऐसा कानून बना। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने इस तर्क की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जस्टिस खन्ना ने इस फैसले में अपना पक्ष अलग से लिखा है, लेकिन फैसले को ही मजबूत करने वाली दलीलें दी हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसे दान देना है ये दानदाता की आजादी है। किसी दानदाता के खिलाफ अगर किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई, रेट्रीब्यूशन, विक्टिमाइजेशन या रिटेलिएशन होती है तो वो कानून और शक्तियों का दुरुपयोग है। इस प्रकार की गैरकानूनी कार्रवाई की रोकथाम की जरूरत है। यह गलत है मगर इसे आधार या स्पष्टीकरण नहीं बनाया जा सकता है। दानदाता को प्रताड़ना से बचाने का तर्क देना सही नहीं है, क्योंकि यह इस गलत प्रथा को ठीक करने के बजाय स्वीकार करता है और उसे जारी रहने देता है। इसके अलावा पारदर्शिता खत्म करके यह जनता के सूचना के अधिकार को बेहद कमजोर करता है। सूचना और जानने का अधिकार अपने आप में ऐसी दंडात्मक कार्रवाई और प्रताड़ना के खिलाफ काम करता है। इसका इलाज पारदर्शिता है ना कि गोपनीयता। यही नहीं, जस्टिस खन्ना की टिप्पणी को तो प्रधानमंत्री देख लेते एक बार नहीं 10 बार। जस्टिस खन्ना ने लिखा है कि चुनावी प्रक्रिया में काले धन की रोकथाम का दानदाता की गोपनीयता से कोई लेना देना नहीं है। जानकारी दबाने से मनी लॉन्ड्रिंग से आए पैसे को वैधता मिल सकती है। मतलब तो यही हुआ कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। फिर भी पीएम मोदी बॉन्ड की तारीफ कर गए और मीडिया ने सवाल तक नहीं पूछा। हिंदी अखबार और अंग्रेजी अखबार प्रधानमंत्री का यह बयान छाप देंगे और आपको याद भी नहीं दिलाएंगे कि 1.5 महीने बाद आया उनका यह बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हर दलील के आधार पर गलत भी है और झूठ भी है। आप दर्शकों को यह समझना होगा कि जो संदर्भ हमने इस वीडियो में दिए हैं और आगे देने जा रहे हैं उसके आलोक में जैसे ही आप प्रधानमंत्री मोदी के बयान को रखते हैं सारा का सारा झूठ दिख जाता है। हिंदी का कोई भी अखबार इस तरह से आपको नहीं बताएगा, इसीलिए बार बार कहता हूं हिंदी अखबार पढ़ने का तरीका बदल लीजिए, हो सके तो अखबार भी बदल दीजिए। अगर सरकार को बताना ही होता कि किस कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया तो सरकार अपनी तरफ से अखबारों में विज्ञापन छपवा देती। यहां हम आपको यह भी याद दिला देना चाहते हैं कि जब चुनाव आयोग ने बीजेपी से पूछा कि आपको चंदा किसने दिया तो बीजेपी ने कह दिया हमने हिसाब ही नहीं रखा किसने दिया। सोचिए कोई 1 करोड़ का बॉन्ड देकर जाएगा, बीजेपी उसके बारे में कोई डिटेल नहीं रखेगी। तथ्य यह है कि सरकार या कानून इसलिए लाई ताकि किसी को पता ना चले कि कंपनियां किसे चंदा दे रही हैं। और इसे ध्यान से सुनिए, कंपनियों की गर्दन मरोड़ दी जाए और उनसे 200 करोड़ चंदे के नाम पर निकलवा लिए जाएं, फिर भी वे बाहर आकर उफ तक ना कर सकें कि छापा मारा गया और चंदा निकलवाया गया। छापे के बाद कोई इतना खुश तो नहीं हो जाता कि बीजेपी को 200 करोड़ का चंदा दे आए। आप दे पाएंगे? अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में जनता को पता चलने का अधिकार शामिल होता तो सुप्रीम कोर्ट इसे अवैध और असंवैधानिक कहता ही नहीं। आप दर्शक प्रधानमंत्री से पूछिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड को रद्द नहीं किया होता और सारी जानकारी सार्वजनिक करने के आदेश नहीं दिए होते तो क्या आप दर्शकों को यह पता चलता या प्रधानमंत्री मोदी विज्ञापन छपवा कर बताते कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में याचिकाकर्ताओं का दावा है कि जिन 41 कंपनियों के यहां ईडी के छापे पड़े हैं इन कंपनियों ने बीजेपी को 2,471 करोड़ का चंदा दिया। दिल्ली शराब घोटाले में सरकारी गवाह बनने के बाद शरद रेड्डी की अरबिंदो फार्मा ने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया। गुजरात की दवा बनाने वाली कई कंपनियों की दवा जांच में फेल हुई तो उसके बाद उन्होंने बीजेपी को करीब 80 करोड़ का चंदा दिया। महाराष्ट्र में टॉरेंट समूह को फडणवीस ने 285 करोड़ के प्रॉपर्टी टैक्स से माफी दी और उसके बाद इस समूह ने बीजेपी को 185 करोड़ का चंदा दिया। टेलीकॉम सेक्टर में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी का नियम बदल दिया गया और उसी समय भारतीय एयरटेल ने बीजेपी को 150 करोड़ का चंदा दिया। क्या ये सब बॉन्ड के कानून के कारण आपको पता चला पता चलता? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल गए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि बहुत सारी जटिल जानकारियां हैं, इन्हें समय पर मिलाना आसान नहीं, इसलिए 4 महीने का समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को डांट लगाई और सख्त आदेश दिए। हरीश सालवे जैसे वकील की एक दलील नहीं चली। तब स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को जानकारी दी और उसकी वेबसाइट पर जानकारियां प्रकाशित हुई। स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खरा से कहा गया कि वे अपने नाम से हलफनामा दायर करें। पहले तो मैनेजर लेवल के अधिकारी के नाम से दायर हुआ। इस दिनेश कुमार खरा को 10 महीने का सेवा विस्तार भी मिला हुआ है। क्या प्रधानमंत्री यह भी भूल गए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार जो जानकारी दी वो आधी अधूरी थी? बॉन्ड के पीछे लिखा हुआ गुप्त कोड दिया ही नहीं गया। फिर से लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, स्टेट बैंक को फिर से डांट पड़ी। तब जाकर स्टेट बैंक ने बॉन्ड का गुप्त नंबर चुनाव आयोग को दिया और लोगों ने फट से मिलान कर पता कर लिया कि किस कंपनी ने कितने का चंदा किसे दिया। केवल इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को 8,252 करोड़ का चंदा मिला है। क्या यह जानकारी भारत सरकार ने खुद से जनता को बताई है, गोदी मीडिया ने आपको बताया है या इन लोगों ने बताया है? हिंदी के कई बड़े अखबारों ने तो खबरें तक नहीं छापी। फिर प्रधानमंत्री कैसे कहते हैं कि अगर वे बॉन्ड का कानून लेकर नहीं आते तो पता नहीं चलता कि चंदा किसने दिया और किसे लिया? फिर आप स्क्रोल न्यूज मिनट, न्यूज लॉन्ड्री, आर्टिकल 14 के इन पत्रकारों की खोज कर लाई गई तमाम रिपोर्ट निकाल कर देखिए। खुद तय कीजिए कि किस गोदी चैनल और गोदी अखबार ने बॉन्ड की रिपोर्टिंग इनकी तरफ से की, जिससे आप जान पाए हो कि बॉन्ड के तहत किसे कब पैसा मिला, कितना पैसा मिला। आप इन वेबसाइट और इन पत्रकारों की रिपोर्टिंग देखिए, और आपके घर पर जो भी हिंदी का अखबार आता है, अंग्रेजी का अखबार आता है, उसे निकालकर मिलाइए, क्या ऐसी रिपोर्टिंग हुई। यही नहीं, क्या प्रधानमंत्री भूल गए कि चुनाव आयोग भी इलेक्टोरल बॉन्ड को पारदर्शी नहीं मानता था। यह मत भूलिए कि उद्योगों की संस्था फिक्की और पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स भी सुप्रीम कोर्ट गए कि किसी को पता ना चले कंपनियों का नाम सार्वजनिक ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका तुरंत रद्द कर दी। कोर्ट ने 15 फरवरी के अपने फैसले में जो कहा था, हम चाहते हैं गौर से सुनिए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कंपनी का शेयर होल्डर को यह जानकारी ना देना कि वो किसे चंदा दे रही है, शेयर होल्डर के अधिकार का हनन है। अगर शेयर होल्डर किसी राजनीतिक दल को चंदा नहीं देना चाहे तो इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता के कारण वो यह तय नहीं कर सकता कि इस कंपनी का शेयर खरीदे या नहीं। कोर्ट ने कहा कि हमने सूचना के अधिकार के मामले में नागरिक और वोटर के अधिकारों की व्यापक परिभाषा के आधार पर फैसला सुनाया है, इसलिए शेयर धारक के बारे में अलग से टिप्पणी नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि फाइनेंस एक्ट में लाया गया गोपनीयता का संशोधन असंवैधानिक है। जस्टिस खन्ना ने अपने फैसले में अलग से कहा कि इस मामले में किसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी द्वारा निजता के हनन की दलील कमजोर है, क्योंकि उसके शेयर धारक और आम जनता के सामने उसके लेन देन को पारदर्शी होना ही होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो घोटाला हुआ है, नीति बदलवाने के नाम पर चंदा देने का जो संयोग नजर आया है, छापे के बाद चंदा देने की जो मजबूरी नजर आती है, इसके बारे में जानकारी आने के बाद भी कोई जांच नहीं हुई। 16 मार्च के वीडियो का हम एक हिस्सा आपको फिर से दिखाना चाहते हैं, ताकि आपको याद रहे कि किस तरह का खेल रचा गया। 16 मार्च के वीडियो में हमने आपको बताया था कि न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज मिनट ने एक दानदाता के बारे में जानकारी निकाली है। इसका नाम है टॉरेंट ग्रुप, और इस ग्रुप की दो सहायक कंपनियों टॉरेंट पावर लिमिटेड और टॉरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का नाम चंदा देने वालों की लिस्ट में आया है। 5 साल पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस कंपनी को 285 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स देने से छूट प्रदान की। अब सामने आया है कि इस कंपनी ने करीब 5 साल में 185 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। इस ग्रुप के चेयरमैन सुधीर मेहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी बताए गए हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने छानबीन कर यह भी पाया है कि 2007 से 2015 के बीच इस कंपनी ने भाजपा को 33 करोड़ से अधिक की राशि दी। इसी समूह की टॉरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने बॉन्ड के माध्यम से कुल 77 करोड़ 50 लाख का चंदा दिया है। इसमें से 61 करोड़ का चंदा केवल भाजपा को गया है। 2019 में इस कंपनी को अमेरिका से अपनी ब्लड प्रेशर की दवाएं वापस लानी पड़ी थी, क्योंकि उनमें कैंसर पैदा करने वाले तत्व पाए गए थे।
भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और जो लोग ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों, उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं, तो ये 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं। और जो देश के हालात हैं, किसी कोने से देख लीजिए आप, जो देश के हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के नेताओं के बारे में जो बातें रख रही है, आज तो देश जान गया है। ईडी सीबीआई से डरा करके इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये जो वसूला गया है चंदा, इसको दबाने के लिए जो विपक्षी नेता है उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस बार चुनाव आने जा रहा है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इन्हें हराओ, इन्हें वापस भेजो, क्योंकि अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक लंबा लेख ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री की बात का जवाब दिया है। जयराम ने लिखा है कि प्रधानमंत्री हर दिन बेईमानी की और अधिक गहराई में उतरते जा रहे हैं। उन्होंने तमिल टेलीविजन चैनल से प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है उसका पुरजोर जवाब दिया है। जयराम का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पूरी तरह से गुप्त रखने के लिए ही डिजाइन किया गया था। उन्होंने उदाहरण दिया कि 2018 से 2024 के बीच 6 वर्षों में किस पार्टी को किस चंदा देने वाले से कितना चंदा मिला, इसकी कोई भी जानकारी जनता के सामने नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SBI यह विवरण प्रकाशित करे कि किसने किस पार्टी को चंदा दिया है। फिर भी रिमोट कंट्रोल से चल रही SBI ने अदालत से झूठ बोला और कहा कि उसने यह जानकारी एकत्र ही नहीं की। फिर उसने डेटा एकत्र करने के लिए 3 महीने का समय मांगा। वे स्पष्ट रूप से लोकसभा चुनाव के बाद तक डेटा सार्वजनिक करने के लिए एक्सटेंशन चाहते थे। यह केवल सुप्रीम कोर्ट का कठोरता के साथ किया गया हस्तक्षेप ही था जिसने SBI को कुछ दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से डेटा जारी करने के लिए मजबूर किया। जब SBI ने राजनीतिक दलों के साथ चंदा देने वालों के डेटा के मिलान के लिए 3 महीने के एक्सटेंशन की मांग की तब वो झूठ बोल रहा था। प्रत्येक दानकर्ता का उस राजनीतिक दल से मिलान करने में जिसे उन्होंने दान दिया था हमारी ही टीम को पाइथन कोड की 5 लाइनें और 15 सेकंड से भी कम समय लगा। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है जिससे मुझे झटका लगा। इसके जवाब में जयराम कुछ तथ्य रखते हैं और आरोप लगाते हैं कि 4 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोजेक्ट्स और पर्यावरण मंजूरी को स्पष्ट रूप से कॉरपोरेट चंदादाताओं द्वारा आपकी पार्टी को दिए गए 1000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन से जोड़ा जा सकता है। भारत सरकार एक सुपरमार्केट बनकर रह गई है। चंदा दो, धंधा लो। कंपनियों पर कम से कम 40 ED, IT, CBI छापे के बाद भाजपा को बड़े पैमाने पर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिला है। प्रधानमंत्री और उनके साथी सुनियोजित ढंग से हफ्ता वसूली में लगे हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक पत्रकार हैं ऋतु सरीन, खोजी पत्रकारिता में जाना माना नाम है। 30 मार्च को ऋतु सरीन की एक रिपोर्ट छपी है। RTI से सूचना हासिल कर ऋतु सरीन ने रिपोर्ट तैयार की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन बॉन्ड की योजना को रद्द कर दिया उससे ठीक 3 दिन पहले भारत सरकार 10,000 करोड़ के बॉन्ड छापने के आदेश जारी करती है। 1-1 करोड़ का बॉन्ड छापने की इतनी जल्दी क्या थी? और जब फैसला आ गया तब उसके कई दिनों के बाद वित्त मंत्रालय इस पर तुरंत रोक लगाने का आदेश जारी करता है। तब तक 8,350 करोड़ के बॉन्ड छप भी गए थे। ऐसी कोई भी खबर आपके हिंदी अखबार में छपी है? क्यों नहीं छपती है? ऐसा नहीं है कि पत्रकारों को खबर नहीं होगी, मगर जब आप यह सवाल पूछेंगे कि अगर यह सब नहीं छपता है तो हिंदी के अखबारों में छपता क्या है, वहां किस लिए सैकड़ों की संख्या में रिपोर्टर दफ्तर जाते हैं और घर लौटकर आते हैं, तब आपको पता चलेगा कि कितनी भयंकर स्थिति है। और यही वजह है कि आज आम जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कह दिया कि सबसे ज्यादा चंदा विपक्ष को मिला। अखबारों ने इस बयान को बिना जांचे छाप दिया कि किसी भी तरह से देखिए तो सबसे ज्यादा चंदा BJP को मिला है। अखबारों को यह छापना था। हिंदी के अखबार 2 अपराध कर रहे हैं, बॉन्ड की जानकारी आप तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं और ऐसे बयानों को चेक भी नहीं करते जिनमें तथ्य गलत हैं, आधे अधूरे हैं और दावे झूठ हैं। केवल बॉन्ड के नाम पर चंदे का धंधा नहीं हुआ है, बल्कि अखबारों ने आपको जानने से रोककर एक तरह से आपकी चेतना ही लूट ली है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हर अखबार के पहले पन्ने पर लिखा होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झूठ, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बोला झूठ, इसका सूचना देने से कोई ताल्लुक नहीं था, यह बॉन्ड गोपनीय रखने के लिए ही लाया गया था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।